कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी तीरावनचारी या राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe. Jai Jai Ganna, Jai Jai Ganna, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Gaura Haribol, 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 Haribol. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Naktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam Skand 7 Adhyay 1 Shlok Sankhya 27 Yatha Vaira Anubandena Martyaha Tata Mayatam Mayatam Yat Na Tata Bhakti Yogena Iti Me Nischita Matihi Yatha Vairanu Bandena Yatha Vairanu Bandena Martyastana Ayata Mityat Martyastama Ayata Miyat Natata Bhakti Yogena Natata Bhakti Yogena इति मे निश्चिता मतिः इति मे निश्चिता मतिः यता वैरानुबन्धेन यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्ततमयतामियात् न तथा भक्तियोगेन न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः वैरानुबन्धेन वैरानुबन्धेन न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः वैरानुबन्धेन मत्यसन्मयतात्या निश्चिता मति वैरानुबन्धेन यस्तन्मयतामियात् ता भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति तथा वैरानुबन्धेन नस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः तथा वैरानुबन्धेन नस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन निश्चिता मतिः वैरानुबन्धेन तथा भक्तियोगेन निश्चिता मति माताजी वैरानुबन्धेन यथा जिस तरह वैर अनुबंधेन निरंतर शत्रुता से मर्त्यः व्यक्ति तन्मयताम उनमें तल्लीनता इयत प्राप्त कर सकता है ना नहीं तथा उसी तरह भक्ति योगेन भक्ति से इति इस प्रकार में मेरा निश्चिता निश्चित मति ही मत विचार। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रु के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। तात्पर्य, सर्वोच्चुद्ध भक्त श्री भगवान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनके मन पूर्णतया कृष्ण में लीन रहता है। निस्संदेह वह अपने में कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन ना रहने का अभाव पता है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी विचार भाव से अपने विषय में सोचते हैं, जगाय मदाय है ते मुझी से पापिष्टा पूरी पेशे कीटा होय मुइन से लदिष्ठा। मैं जगाई तथा मधाई से भी निकृष्ट पापी हूँ और मैं मल के कीड़े से भी घटकर हूँ। शुद्ध भक्त अपने को सदैव हीन समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने की निमित्त श्रीमती राधा रानी के पास जाता है तो वे भी यही सोचती है कि वह भक्त मुझसे बढ़कर है। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि उनके मतानुसार कृष्ण के शत्रु अच्छी स्थिति में होते हैं क्योंकि वे इन विचारों में कि कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतया लीन रहते हैं। जिस प्रकार अत्यंत विषयी मनुष्य सदैव स्त्रियों तथा उसकी संगति के विषय में सोचता रहता है, इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 2400 घंटे कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। वृंदावन में दर्शित राग मार्ग में अनेक भक्त है, चाहे दास हो, साक्यरस हो, वात्सल्य हो या माधुर्य, कृष्ण के भक्त सदैव कृष्ण के विचारों में अभिभूत रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गावों को चराते तो गोपियां सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती है कि कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे, उनके पांवों के तलवे इतने कोमल है कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपनी वक्षस्थलों पर रखने का साहस नहीं कर पाती। फिर भी वही चरण कमल कांटों से भरे हुए जंगल में विचरण करते हैं। गोपियां अपने अपने घरों में से विचारों में मग्न रहती है, यद्यपि कृष्ण उनसे दूर होते हैं। इसी तरह कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं तो माता यशोदा को यही विचार रहता है कि कृष्ण लगातार खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतएव वे कमजोर पड़ जाते होंगे। ये उन आनंद अनुभूतियों के उदाहरण हैं जो कृष्ण की सेवा करने समय वृंदावन में प्रकट होती थी। नारद मुनि ने इसी श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है, विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए। नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किस तरह कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच जाएगा। कृष्ण के चरणों में पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की चरम स्थिति है। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिताश्च विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये श्लोक बड़ा विचलित करने वाला श्लोक है, साथ साथ में इसके ऊपर व्याख्या करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त नारद मुनि, भक्ति के प्रचारक नारद मुनि एक विपरीत उपदेश या सलाह या अपना मत प्रकाशित करते हैं। क्या है वो? कहते हैं इस श्लोक में कि यथा वैरानुबंधेन, यानी जो जीव भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैर भावना से बंधित है या भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैर भावना से यानी दुश्मनी के भावना से जो जीव है, जैसे शिशुपाल, दंतरवक, कंस इत्यादि, रावण, इन सब लोग क्या है,
स्वैरानुबन्धेन मर्त्यः तन्मयताम्। इनकी जो तन्मयता है, किनकी? वैरानुबंधेन तन्मयता, इनकी तन्मयता जो है ना इत ना तथा भक्ति योगेन। उनकी तन्मयता जो है वो इतना श्रेष्ठ है कि अगर तुलना करेंगे जो भक्ति योग में युक्त है, कौन कौन है, जैसे स्वयं अपने आप के बारे में कहते हैं नारद मुनि, जैसे मैं हूँ और अन्य जितने भी बहुत सारे जो भक्त है भगवान के, वो सारे भक्तों की जो तन्मयता है भगवान के प्रति वो उतना नहीं होगा जितना ये वैर भावना से युक्त भक्तों का है या वैर भावना से युक्त जीवों का है। ऐसे नारद मुनि कहते हैं निश्चिता मति ही, ये मेरा निश्चित मत है, इट इज ए कंक्लूसिव ओपिनियन ऑफ माइंड, कंक्लूसिव ओपिनियन मतलब इससे बढ़कर और कोई मत है नहीं, मेरा यही विचार है। जो इन लोगों की भक्ति देख के, इन लोगों का भगवान के प्रति तन्मयता देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो तन्मयता है भगवान के प्रति या भक्तों की जो तन्मयता है वो उतना नहीं है, ये मेरा मत है करके नारद मुनि इस श्लोक में कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में नारद मुनि अपने मत में कहते हैं कि ये शिशुपाल का जो भक्ति है और अन्य असुरों का जो भक्ति है वो हमारी भक्ति से श्रेष्ठ है। देखिए इसके ऊपर विचार किए जाए, इसके ऊपर क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य इसके श्लोक को इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। तो ये व्याख्या करते हुए दो बहुत महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हैं। नारद मुनि ने इस श्लोक को क्यों उच्चारण किया, इस श्लोक को उच्चारण करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक, अपनी स्वयं अपनी नम्रता को प्रकाशित कर रहे हैं और दूसरा भगवान की भक्ति खास करके तन्मयता में किस प्रकार मन भगवान का स्मरण में उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है उसकी स्तुति करते हैं, ना कि भक्तों का या उन उस प्रकार के भक्तों का। शिशुपाल या अन्य असुरों की स्तुति नहीं हो रहा है बल्कि इधर उनकी जो भगवान के प्रति जो मन लगा हुआ है उस प्रकार की जो भक्ति है जो आविष्ट होके भगवान का 24 घंटा स्मरण करने की जो प्रवृत्ति है जो 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 स्थिति है उसका वर्णन हो रहा है। भक्तों को और अच्छी तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाए, जैसे साधना भक्ति में जुड़े हुए भक्त है जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो कौन सी स्तर की जप है, वो नाम अपराध या कभी कभी नामाभास होता है, मुख्यतः हम नाम अपराध के स्तर में करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है वो बोले अरे हरे कृष्ण वाला इधर को, उनकी जो इस प्रकार की हरे कृष्णा उनके मुख से जब उत्पन्न होता है वो जो हरे कृष्णा शब्द है वो जो नाम है वो कौन से स्तर का माना गया है, नाम आभास का माना गया है। तो देखा जाए बड़ा विचित्र बात है, अरे हम तो साधक कितने साल से भक्ति करते हैं हमारी जो नाम उच्चारण है उसको कैसे तुलना किया गया है, नाम अपराध बोला गया है, लेकिन जो नया है कुछ भी नहीं मालूम कृष्ण के बारे में। और जैसे अजामिल का, अजामिल ने क्या किया, उन्होंने नाम आभास में उच्चारण किया, यानी वो जो नाम अजामिल ने उच्चारण किया उसकी स्तुति हो रहा है, अजामिल की स्तुति नहीं हो रहा है। उसी प्रकार इस बात को समझना चाहिए, नारद मुनि जब शिष्यपाल जिस प्रकार भक्ति किए उस भक्ति का स्तुति कर रहे नाल की, ये शिष्यपाल की स्तुति नहीं है। या दूसरे शब्दों में ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि कह रहे हैं कि यशोदा मई से भी शिष्यपाल श्रेष्ठ है या अन्य गोपियों से भी शिष्यपाल या अन्य जितने भी असुर श्रेष्ठ है, इस बात को स्पष्ट रूप में कहा गया है या अप्रत्यक्ष रूप में कहा गया है। तो इधर दो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहला पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं स्वाभाविक है भक्त नम्र होता है, अगर किसी और भक्त के अंदर थोड़ा सा ये भक्ति को देखता है वो सोचता है कि कितना महान है उनकी भक्ति, मेरे पास तो कुछ भी, मैं नीच हूं, की नम्रता और दूसरा शिशुपाल की जो भक्ति है उनकी स्तुति ये हो रहा है। ये दो महत्वपूर्ण बात है। अगर ये दो चीजों को मन में नहीं रखेंगे ऐसा लगता है कि नारद मुनि इतने बड़े भक्ति के व्याख्याकार है तो ऐसा क्यों कह रहे भाई, इज सेइंग दिस थिंग। तो ये दो, ये श्लोक के पीछे ये दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम सबसे पहला, ये जो पहला पॉइंट में जो नम्रता है उसको हम स्वीकार करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनके मन पूर्ण तरीके से कृष्ण में तल्लीन है। निस्संदेह वह अपनी कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन ना रहने का अभाव पता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर है। तो प्रभुपाद निश्चित रूप में लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण के शत्रु जो है कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर है। सबसे पहला उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि जगाय मदाय जो है वो मेरे से वो महान लोग हैं। इतना ही नहीं, मैं कौन हूं, मैं जो मल में जो कीट होता है उससे भी मैं गया गुजरा हूं। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक को रचना करते हैं। क्या हमको ये भी सच में समझना चाहिए, देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं कहते हैं, ये तो प्रमाण है, वो स्वयं कहते हैं कि मैं कीट से भी गया गुजरा हूं, तो इसलिए तो उनको क्या आदर देने की जरूरत है, ही इज नोबडी, वो तो एकदम नीच है। ऐसा कोई कहने लगा, ऐसा सोचने लगा तो निश्चित रूप में नरक जाएगा। इसलिए जब कोई भी श्लोकों को शास्त्रों में इसका समझा जाता है, हमको समझना होता है उसके पीछे जो भावार्थ है उसको समझना चाहिए। अर्थ से बढ़कर होता है भावार्थ। अगर कोई अर्थ के ऊपर जाने लगता है तो निश्चित रूप में कभी कभी वो गलत सिद्धांत को समझने के लिए वो घातक हो सकता है, उसकी गलत सिद्धांत को समझ सकता है, उसको गलत निष्कर्ष पे पहुंच सकता है। इसलिए हर श्लोक के पीछे, हर जो शब्द के पीछे भावार्थ को जानना अति आवश्यक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इस बात को लिखते हैं जगाय मदाय है ते मुय से पापिष्ट, वो कौन है, उनसे भी जगाय मदाय से मैं ज्यादा पापी हूं। और आगे क्या कहते हैं कि पूरी पेशे खीट है ते मुय से लदिष्ठा, मैं कीट से भी नीचा गया गिरा हुआ व्यक्ति हूं, जो मल में जो कीट होता है, आई एम वर्स देन स्टूल वर्म इन द स्टूल। तब इस बात को क्यों कहते हैं, क्योंकि अपनी नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं, आई एम सो यूजलेस। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, भक्तों का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, वो किसी व्यक्ति के अंदर भी वो एक अच्छा गुण को वो स्वीकार करते हैं, एक अच्छाई को देखते हैं। कल एक बात मैं प्रवचन में गया था तो उस समय एक व्यक्ति ने पूछा कि आजकल जो आतंकवाद हो रहा है उससे उसके बारे में आपका विचार क्या है। मैंने कहा सबसे पहला जब मैं इन आतंकवादियों को उनके बारे में बहुत देखा है, कुछ पढ़ा है क्या क्या हुआ, बहुत थोड़ा दो तीन दिन से सूक्ष्म विचार से उसको पढ़ रहा हूं। मैंने कहा ये आतंकवादियों के अंदर जो ये आतंकवाद का जो गुण है, अगर हमारे जो वर्तमान भक्तों में एक भक्त के भी अंदर आ गया, यानी वो अपना जो धर्म है उसको प्रचार करने के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार है, अगर वो गुण हमारे अंदर आ गया तो क्या नहीं हो सकता। हम लोग अपने मित्रों को ये भगवद गीता देके जरा पढ़ो इसको बोलने में शर्माते हिचकिचाते हैं, और ऑफिस जाने के टाइम तिलक धारण करने के लिए शर्माते हुए जाते हैं। और ये लोग देखिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार है, अपने धर्म को स्थापना करने के लिए, अपने धर्म की बढ़ावा करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक तो आप गुण तो सीख सकते हैं आतंकवादियों से, वो हमसे अच्छा है। अगर इस बात को बोला जाए लोग सोचेंगे अरे हमसे आतंकवादी थोड़ी ना अच्छा है, लेकिन बात यह है कि उनके अंदर वो जो गुण है, क्या है वो गुण, वो अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार है, कहां वो कैसे पहुंचे, कोई और देश को कैसे बच बच के पहुंचे। हम पड़ोस वाला जो हमारा मित्र है उनके घर में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए 10 बार सोचते, विचार करते, क्या करेगा, आलसीपन दिखाते हैं। वो लोग कहां से आए और कैसे आए और अपना जीवन को जान को जोखिम में डाल के आए, और ये बात अगर प्रचारक सीख ले तो क्या कहा जाए। हम बोलते हैं कि हम महान हैं, जैसे नारद मुनि ये शिष्यपाल की स्तुति कर रहे हैं, हम इसका भी स्तुति कर सकते हैं, आतंकवादी महान है। क्यों? कि अपने धर्म को स्थापना करने के लिए अपने विचार को नत को श्रेष्ठता पालन करने के लिए। बाकी सब दूसरी की बात है, लेट इट बी सेकेंडरी, लेकिन पॉइंट ये है कि उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, उनके अंदर जो उत्साह है, वो तो हमको स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। तो ये उनके अंदर ये जो गुण है उसको स्वीकार करने में कोई, अगर उसको देखते हुए आगे भी कहा जाए उनके सामने हम कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं प्रभुपाद जी के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, अगर इस प्रकार भक्तों का विचार निश्चित रूप में होना चाहिए, कि अगर नहीं होगा हृदय जो है और कठोर होता जाएगा। नम्रता के बिना हमारे हृदय जो है बहुत कठोर हो जाएगा, बहुत पत्थर जैसा होगा। जो पत्थर जैसा हृदय में कभी भक्ति प्रकृति नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी नया भक्त आता है, कोई भी इवन भक्त की क्या कहना, मंदिर में गलती से भी आ जाता है, वो रॉयल कॉलेज का पता करने के लिए वो मंदिर में आ गया, तो वो भी उसको भी भक्त सोचना चाहिए, कम से कम आया तो सही, कम से कम आया तो सही। तो ये विचार हमारे मन में हमेशा होना चाहिए, किसी व्यक्ति के अंदर एक अच्छे गुण को देखना, और दूसरा ये गुण मेरे अंदर नहीं है, मैं कितना नीच हूं, तो ये हमेशा भक्तों का इस प्रकार का विचार होना चाहिए। हाउ आई एम सो लो, हाउ आई एम सो डिग्रेडेड, मैं कितना नीच हूं, मैं कितना पापी हूं, देखो ये लोग कितने अच्छे हैं। तो हमेशा भक्तों की मनोभावना इस प्रकार होना चाहिए, चाहे वो नया भक्त क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनके अंदर जो भक्ति का जो प्रवृत्ति है, थोड़ा सा छोटा सा ये प्रवृत्ति है, तो ये उनको हमको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करके उनको उसका सराहना करना चाहिए। जब एक पापी व्यक्ति भी मंदिर में आके कुछ अपने हिसाब से कुछ भक्ति का कार्य दिखाता है, तो उस समय उसके अंदर जो भक्ति है उसका गुणगान करना चाहिए। भागवतम में केवल 3 ही बातें हैं, क्या है वो? वो है भगवान, भगवान के भक्त और भक्ति, इन तीनों का स्तुति, इन तीनों का गुणगान, इन तीनों का वखान मात्र ही भागवतम में है। तो प्रत्येक श्लोक भागवतम में जब हम उसके ऊपर व्याख्या चर्चा करते हैं, तो उस समय ये 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि उस श्लोक का निष्कर्ष केवल इन तीनों का पुष्ट करने मात्र के लिए है, भक्ति, भगवान और भक्त। क्योंकि ये 3 ही, भक्ति, भगवान और भक्त, डिवोशन, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डिवोटी, ये 3 ही सनातन तत्व है, ये 3 ही सनातन है। तो ये तीनों को पुष्ट करने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए प्रत्येक श्लोक इस्तेमाल किया गया है भागवत में। तो इस श्लोक को भी जब चर्चा करते हैं, उसके अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि इधर अरे शुद्ध भक्ति का तो एकदम नीचा दिखाया गया है, नहीं, भले ही प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है कि इधर शुद्ध भक्ति का थोड़ा सा नीचा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इसी श्लोक जो है भक्ति का गुणगान हो रहा है इसके अंदर, या भक्तों का गुणगान हो रहा है। तो भक्तों का गुणगान किस किस विचार में हो रहा है? क्योंकि वो हमेशा नम्र होते हैं, उनकी नम्रता का गुणगान हो रहा है इधर। और साथ साथ में भक्ति का गुणगान कैसा हो रहा है कि जब इतने जो असुर लोग, जब भगवान का इस प्रकार स्मरण करना उसको भी इतना महान माना गया है, तो जैसे गोपियों का, यशोदा मई का, अन्य ग्वाल बालों का जो भगवान कृष्ण के प्रति जो स्मरण है, उनका चित्त जिस प्रकार भगवान में लगा हुआ है, उनका क्या स्थिति होगा, जो कौमुत्तिक न्याय कहा जाता है, कि ये भी ये इतना महान है, शिशुपाल का भक्ति का ही गुणगान किया गया है, तो उनका भक्ति का क्या कहना। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में हमको इस प्रकार, खास करके नारद मुनि के जो प्रचार है, उनके जो शब्द है, वो सीधा सीधा नहीं रहता, हमेशा जो है थोड़ा सा वो उल्टा रहता है, उनका बहुत चतुर है, तो लोगों को भक्त बनाने में भी चतुर है और साथ साथ में उनका जो भक्ति के या अन्य व्याख्या है वो भी बहुत चतुराई से होता है. इट इज ऑल्सो इज ऑलवेज वेरी मिस्टिकल नारद मुनि का. तो ये नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है. प्रभुपाद ये आगे लिखते हैं कि जब कोई भक्त श्रीमती राधारानी के पास जाता है, ओ हे राधे आप मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए राधारानी, तो ये प्रार्थना से राधारानी के पास जाता है तो राधारानी यही सोचती है कि देखो ये भक्त के पास कितना भक्ति है भगवान के प्रति, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. तो ये जो सोचना मैं बड़ा भक्त हूं, मैं सीनियर भक्त हूं, ये बड़ा घातक विचार है. जिस व्यक्ति के अंदर हम ही बड़ा भक्त और मैं सीनियर हूं, ये विचार जैसे आया वही समय वो उसका पतन का शुरुआत हो गया. अस्तित्व पतन का शुरुआत की क्या कहना, पतन हो ही गया. हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे सामने जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, छोटा सा भी भक्ति का कार्य क्यों ना रहा हो, देखो कितना श्रद्धा है. तो एक बार एक ऐसे मंदिर में मैं एक बार जपा कर रहा था, एक व्यक्ति आया था, कोई आया था और वो प्रणाम कर रहा था, भगवान को प्रणाम कर रहा था. कैसे कर रहा था, कुछ लोग अजीब अजीब तरीके से प्रणाम करते हैं, वो दोनों हाथ को पीछे रखेंगे और नीचे ऐसे झुकेंगे. तो मेरे साथ और एक भक्त क्या प्रणाम करने के तरीके होते हैं क्या, ऐसा उनको डांटने लगा. तो मैंने उनको कहा कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो आप तो कर नहीं सकते हो, ऐसा रखना ऐसा करना नाना प्रकार का हंगामा, कम से कम कुछ तो कर रहा है ना वो, उसको छोड़ो. तो आप जो आपके प्रवचन में आपके जो अंडर में जो शिक्षा लेने के लिए आएंगे उनको ये सब कहना. तो इतना कहने का भाव ये था उस भक्त को मेरा कि ये जो व्यक्ति है कम से कम आया तो सही मंदिर में, कम से कम आने के बाद वो भगवान को सीधा जाके प्रणाम कर रहा है, वो ना प्रज्वलित कर रहा है ना इधर उधर के बातें कर रहा है कि नहीं. तो कम से कम वो कुछ भी करे उनको मालूम है भगवान है, ये भगवान के सामने झुकना चाहिए उतना तो मालूम है. लेकिन हम लोग इतना मंदिर में इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन हमारा चेतना क्या रहता है, कुछ और चीज के प्रति रहता है, लेकिन और चीज के प्रति रहता है. तो ये सब बातों को बाद में ध्यान से हमको अपने जीवन में आचरण करना होगा. जब स्वयं श्रीमती राधारानी सोचती है कोई भी भक्त उनके पास आता है तो सोचती है कितना अच्छा भक्त है, तो राधारानी से बढ़कर तो और कोई भक्त है नहीं. तो भक्ति सामने सिंधु के अनुसार अगर इस जगत में अगर कोई भक्त है तो वो श्रीमती राधारानी, टेक्निकली शी इज द ओनली डिवोटी ऑफ कृष्णा. वो स्वयं इस प्रकार विचार करती है तो हमारी क्या कहना वो अरवी. तो कभी भी कोई भी भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए, वन शुड नेवर क्रिटिसाइज. निंदा इसके वजह से होता है, क्यों, क्योंकि अहंकार होता है. अहंकार मतलब मैं उससे वरिष्ठ हूं, मैं उससे श्रेष्ठ हूं, वो कौन है, उसने इतना किया तो मैं इससे अच्छा हूं, वो क्या है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है. तो जैसा कोई व्यक्ति किसी भक्त को का कार्य को देखे, मान लीजिए कोई एक भक्त ने पूरा दिन स्टॉल लगा के केवल 5 किताब बेच के आया, तो उसने पूछा आपने कितना किताब बांटा, तो दूसरा वक्त ने कहा इसने कहा कि मैं 5 पाटा, तो दूसरा अरे 5 इसमें क्या बड़ी बात है. अगर कोई कह दिया ऐसा तो समझ लीजिए वो बड़ा अपराध माना जाता है. क्यों, क्योंकि भले ही उसने 5 ही बांटा है लेकिन 5 तो बांटा है ना, तो 5 ही में और 5 तो, ये दोनों में बहुत अंतर है. तो किस प्रकार किस दृष्टिकोण से भक्तों का कार्यों के देखते हैं उसके ऊपर आधारित हमारी भक्ति की प्रगति. जितना हद तक हम अपने आप को नम्र मानते हैं और दूसरों की भक्ति का गुणगान करते हैं तो उस समय हमको हमारी भक्ति में प्रगति होता है. जैसे इधर नारद मुनि स्वयं शिष्यपाल की इस प्रकार की प्रेमाविष्ट होते हुए देख के आवे या ये वैर में ये तल्लीनता देखते नारद मुनि इनका शिष्यपाल की भक्ति का वकान कर रहे हैं. तो इवन ये टेररिस्ट का जब बात पता नहीं सुबह भी पढ़ रहा था इस श्लोक को तब मुझे यही बात आ रहा है. जब कल शाम के प्रवचन में किसी ने पूछा तो मैं थोड़ा सा बात को घुमा के मैराथन में लेके आने वाला था, तो उसके लिए मैंने इस बात को कहा कि आपको भी उसी प्रकार का टेररिस्ट बनना है. तो सब लोग एकदम चमित हो गए, क्या ये क्या कह क्या रहा है. तो मैंने भागवतम का श्लोक कोट किया जहां कहा गया है जो भी व्यक्ति भगवान के नामों का प्रचार करता है वो भी एक टेररिस्ट है. तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, ये शब्द इस्तेमाल किया विप्लव, विप्लव मतलब क्या है, विप्लव मतलब रेवोल्यूशन. जो सादा सीधा साधा जीवन होता है उसको ठीक विरुद्ध विपरीत करने वाला को विप्लव कहा जाता है। तो अभी बॉम्बे में जीवन कैसा रहता है, तो रोज सुबह ट्रेन पकड़ो, जाओ काम करो, वापस आओ सो जाओ, वो इसी में पैसा बनाओ, इंद्रिय तृप्ति करो, इसी में रहता है। तो ये आतंकवादियों ने क्या किया, लोगों की इस प्रकार के जीवन में विप्लव लाया है कि नहीं। तो ऐसे ही भक्त लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी लोगों के जीवन में विप्लव लाते हैं। कैसे लाते हैं, भगवान की जो वाणी है उसके द्वारा लाते हैं। भगवान की वाणी जैसे भगवत गीता है, भागवतम से लाते हैं। भगवत गीता क्या है, प्रभुपाद कुछ भक्तों ने कहा कि दिस भगवत गीता इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। ये बात को इसलिए कहा प्रभुपाद जी ने क्योंकि एक भक्त ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी क्या 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 मालूम है कि जो हम लोग भगवत गीता बांटते हैं कि वो पढ़ेगा कि नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, कोई कभी और पढ़ेगा, और वो कभी नहीं पढ़ेगा तो कोई और पढ़ेगा। तो ये बड़ा टाइम बॉम्ब है। तो अस्तित्व में ये श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति वो भी बड़ा ये भौतिकवादियों के लिए बड़ा आतंकवादी है। वो भी जो माता पिता है जिनके बच्चे इस आंदोलन में ज्वाइन किए हैं उनसे जाके पूछिए कि ये हरे कृष्णा के जो भक्त लोग आतंकवादी है कि नहीं, वो स्पष्ट रूप से बताएंगे ये सच में आतंकवादी है। ऐसा आतंकवादी है कि आप सोच भी नहीं सकते कहां कहां कैसे पहुंच जाते हैं और लोगों का जो है उनका पूरा जीवन शैली बदली कर देते, दे चेंज कंप्लीटली। तो उनके अंदर एक गुण है। वैसे ही हम प्रत्येक भक्त को इस प्रकार एक जोश होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, भले जीवन जाए। जैसे बक्सन ठाकुर कहते हैं, प्राण आचे तार हेतु प्रचार, पता नहीं बराबर मुझे वो श्लोक नहीं मालूम, कि जिसके अंदर कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर प्राण है वही व्यक्ति प्रचार कर सकता है। यानी दूसरे शब्दों में जिसके अंदर प्राण नहीं है वो प्रचार नहीं करेगा। और थोड़ा सा आके लेके चाहेंगे इस बात को, जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता वो मरा हुआ व्यक्ति है। यानी दूसरे शब्दों में और आगे लेके जाएंगे, अगर कोई प्रचारक है उसको ये सोचना चाहिए कि मैं प्रचार करूंगा या मर जाऊंगा, ये दोनों में ऑप्शन है बस। तो वही भावना टेररिस्ट के पास था, वही बात बक्सीदास ठाकुर ने वही कहा। सेम थिंग, लैंग्वेज अलग है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो इस बात को व्यक्ति के अंदर जीवन में स्वीकार करना चाहिए, आई विल प्रीच और आई विल डाई, बेटर डाई देन प्रीच, और बेटर डाई इफ यू आर नॉट प्रीचिंग, दैट इज द होल फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये गुण को भी हम स्वीकार कर सकते हैं इन लोगों से। और इधर नारद मुनि अपनी नम्रता के द्वारा इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि वे इन विचारों में किसी कृष्ण की कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतया लीन रहते हैं। जिस प्रकार अत्यंत विषयी मनुष्य सदैव स्त्री तथा उनकी संगति के विषय में सोचता रहता है। तो एक तुलना किया गया है कि ये जो असुर लोग भगवान का स्मरण करते हैं, किस प्रकार स्मरण करते हैं, जिस प्रकार एक विषयी व्यक्ति, ये स्त्रैण्य व्यक्ति हमेशा स्त्री संगति के लिए आसक्त रहता है, स्त्रियों के बारे में सोचता रहता है, उनकी संगति के बारे में हमेशा मैं ऐसा बात करूंगा, उनसे ये कहूंगा, 24 घंटा उनके मन में टेप रहता है। उसी प्रकार ये असुर लोग विचार करते हो क्या ये इनको ऐसा मारूंगा, इनको ऐसा डांटूंगा, इनको ऐसा करूंगा, तो भगवान के बारे में तो स्मरण करते रहते तो ये स्मरण के बारे में अनेकों जगह शास्त्रों में कहा गया है। अभी हम देखेंगे नारद मुनि इस श्लोक में कहते हैं कि निश्चिता मति ही, ये मेरा मत है भक्ति के बारे में, ये निश्चिता मति ही, ये मेरा निश्चित मत है। तो अभी तक हमने नम्रता के बारे में चर्चा किया, तो इस श्लोक के पीछे जो अप्रत्यक्ष अर्थ है कि किस प्रकार नारद मुनि इस श्लोक को उच्चारण करते हुए बहिरंगिक तरीके से शिशुपाल की भक्ति का वखान कर रहे, लेकिन अंतरंग तरीके से जो भक्त लोग शिशुपाल जैसा स्मरण कर रहे हैं, यानी जिनके स्मरण की बात हो रहा है, भक्ति की बात नहीं हो रहा है, उन भक्तों का गुणगान इस श्लोक में किया जा रहा है, वो प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं। तो वो पैराग्राफ में जाने से पहले हम देखते हैं कि नारद मुनि ने ग्रंथ रचना किया है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र का रचना नारद मुनि कुसुम सरोवर के पास से बैठ के रचना किया। तो इसका पहला जो पार्ट है उसके अंदर भक्ति का गुणगान किया गया है कि भक्ति कितना महान है वो सारे वैदिक शास्त्रों से परे है, या इनका गुण वेदों में भी हमको प्राप्त नहीं होता है। जो भक्ति को स्वीकार किया है तो अन्य वैदिक जो नियम कानून को पालन करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजों को भक्ति का गुणगान लिखते हैं पहला भाग में, और दूसरा अध्याय में नारद मुनि भक्ति का जो व्याख्या करते हैं, यानी उनका डेफिनेशन, व्याख्या नहीं बल्कि उनका डेफिनेशन को क्या बोलेंगे, उनका सूत्र, उनका परिभाषा करेंगे। तो भक्ति का परिभाषा करते हुए चार लोगों का परिभाषा देते हैं स्वयं अपने का मिला के। सबसे पहला परिभाषा देते हैं व्यासदेव का। तो व्यासदेव का परिभाषा देते हुए कहते हैं कि पूजादिषु अनुराग इति पराश्चर्यः। व्यासदेव द सन ऑफ पराशर सेज दैट भक्ति इज फाउंड अटैचमेंट फॉर वर्शिपिंग द लॉर्ड इन वेरियस वेज। पूजादिषु यानी पूजा और इत्यादि अर्चन वगैरह करना, कैसे करना, अनुराग, अनुराग से भगवान की पूजा करना जो है उसको भक्ति करके व्यासदेव कहते हैं। उसके बाद व्यासदेव का डेफिनेशन के बाद गर्गाचार्य की जो डेफिनेशन, गर्गाचार्य का परिभाषा देते हैं भक्ति के बारे में नारद मुनि, क्या है वो, कथादिश्विति गर्ग। गर्ग मुनि क्या कहते हैं, भगवान की कथा के प्रति आसक्ति, यानी कथादिश इति, यानी भगवान की कथा के प्रति एकदम अनुराग रहना, उसको गर्ग मुनि कहते हैं भक्ति है। तो सबसे पहला व्यासदेव ने पंचरात्रिक विधि को भक्ति कहा, गर्ग मुनि ने क्या कहा, भागवत विधि को उन्होंने भक्ति कहा। आगे देखते हैं शांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं। शांडिल्य के बारे में आत्म रति अविरोधे थी शांडिल्य। शांडिल्य सेज दैट भक्ति रिजल्ट्स फ्रॉम वंस रिमूविंग ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस टू टेक प्लेजर इन द सुप्रीम सेल्फ। तो दूसरे शब्दों में ये आत्मादिशु, ये आत्मरति ही, ये शब्द का व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं भगवान को पूर्ण तरीके से संतुष्ट करना ही भक्ति करके कहा गया है। या दूसरे शब्दों में भक्ति रसामृत संत में कहा गया है कि भजनीय परम पुरुष सुखम ही स्वसुखत्वम, यानी भगवान का सुख ही मेरा सुख है करके समझ के रहना, उसी को भक्ति कहा गया है। इस बात को इंगित करते हैं आत्मरति अविरोध ये थी शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि इसको क्या क्या करते हैं। आगे नारद मुनि अपना स्वयं अपनी भक्ति का व्याख्या परिभाषा देते हैं। नारदस्तु तद अर्पिताखिलाचरात् तद विस्मरणेन परम व्याकुलेति। विस्मरणेन परम व्याकुलेति, नारद मुनि अपना मत कहते हैं कि भगवान का हमेशा स्मरण करते रहना, और दूसरा जब भगवान का विस्मरण होता है उस समय एक प्रकार की व्याकुलता को अनुभव करना, ये उन्होंने भक्ति का डेफिनेशन दिया। आगे नारद मुनि स्वयं कहते हैं कि भक्ति इज इन फैक्ट करेक्टली डिस्क्राइब्ड इन ईच ऑफ दीज वेज। भले ही चार प्रकार की मतों को नारद मुनि प्रस्तुत करते हैं, ये चारों प्रकार के मत सही है। अनुराग से भगवान के अर्चन वगैरह का पूजा करना, ये व्यासदेव ने कहा, और उसके बाद गर्ग मुनि ने कहा कथा के प्रति आसक्ति, ये भी भक्ति है उन्होंने कहा। भागवत विधि का उन्होंने प्रस्ताव रखा, और आगे कहते हुए राग भक्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भजनीय परम आत्मरतिरेशु, भगवान के प्रति रति यानी भगवान के सुख में ही मेरा सुख है करके समझना, ये शांडिल ऋषि ने कहा। ये तीनों को परतमा यानी भगवान की जो भक्ति का जो लेवल 1, 2, 3 ये तीनों को वर्णन किया। करने के बाद नारद मुनि अपना स्वयं अपना मत कहते हैं। ये जो स्थिति है ये किन लोगों का स्थिति है, नारद मुनि जिन भक्तों का नजर में रखते हुए ध्यान में रखते हुए इन श्लोक को उच्चारण करते हैं कि विस्मरणेन परम व्याकुलता, विस्मरणेन परम व्याकुलता मतलब भगवान की विस्मरण में, दूसरे शब्दों में उनकी अनुपस्थिति को जब अनुभव किया जाता है उस समय जो व्याकुलता होता है उसको भक्ति कहते हैं। तो ये सीधा इंगित करता है गोपियों के लिए। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं भले ही ये चारों के चारों मत सही है और करेक्ट है, भक्ति इन फैक्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड इन ऑल द थ्री वेज ऑल द फोर वेज, बट स्टिल नारद मुनि कहते हैं मैंने जो कहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसको पुष्ट करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ भक्तों का उदाहरण देता हूं। वो कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम, जिस प्रकार व्रज गोपिकाएं भगवान की विस्मरण में, यानी जब वो कहे कहां गए गोकुल वृंदावन छोड़ के जब मथुरा गए और द्वारका की ओर गए तो उस समय जो व्रज गोपियों का जो अवस्था था क्या था, व्याकुल हो रहे थे। ये जो व्याकुलता है उसको मैं भक्ति कहता हूं करके नारद मुनि कहते हैं। तो ये पंचरात्रिक विधि भी है वो भी भक्ति है, भागवत विधि भी भक्ति है। मान लीजिए भागवत विधि भी वो कथा के प्रति आसक्ति है लेकिन कथा अपनी संतुष्टि के लिए कोई व्यक्ति सुनता है तो भले ही वो अच्छा महान भक्ति है लेकिन फिर भी भगवान का जो संतुष्टि के बारे में विचार नहीं होता है तो वो भी उनको इतना महान नहीं माना जाता है। इफ समबडी इज हियरिंग फॉर हिज ओन प्लेजर, उसके बाद भगवान की संतुष्टि का ही विचार रखना ये भक्ति है। लेकिन नारद मुनि का जो विचार क्या है, उनका मत क्या है, व्याकुल। क्या व्याकुल होना, उनकी विस्मरण में व्याकुल होना, ये व्याकुलता को नारद मुनि इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं। देखो कम से कम ये शिशुपाल भगवान का स्मरण तो कर रहा है, मेरा नहीं हो रहा है स्मरण, ये क्या है, व्याकुलता है। तो इस व्याकुलता में शिशुपाल की भक्ति का उधर गुणगान हो रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं दिस इज इनडायरेक्टली हिंटेड इन दिस वर्स, इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप में, जैसे हिंदी में कहां रखा, जो कि नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। यानी इधर क्या हो रहा है, शिशुपाल भगवान का स्मरण कर रहा है, उसको महान कह रहे हैं। उसको महान क्यों कह रहे हैं, मेरा स्मरण नहीं हो रहा है। वो स्मरण नहीं होने की जो व्याकुलता है, वो व्याकुलता की वजह से जिसका स्मरण हो रहा है उनका वखान कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है इस श्लोक में। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे इस श्लोक को वो व्यक्त नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। अरे कम से कम इसके पास ये तो है, मेरे पास वो भी नहीं है। शिशुपाल भगवान का स्मरण कर रहे 24 घंटा, मेरा नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे गोपियों ने देखा कि जो चरण कमल जिनको सेवा करने के लक्ष्मी लालायित हो जाती है, वही चरण कमल क्या हो रहा है, कालिया नाक के ऊपर नाच रहे। कालिया ने किया क्या, ये गोपियां किसके लिए कालिया का स्तुति कर रही है, क्योंकि आप उनकी चरण कमलों को, भगवान की चरण कमलों को अपने स्थानों के ऊपर प्राप्त नहीं करने का जो वो स्थिति है, उसकी जो व्याकुलता है, वो व्याकुलता से कालिया का स्तुति कर रहे हैं लोग। दे आर ग्लोरिफाइंग कालिया। अपनी गोपी गीत में इस बात को कहते हैं कि फणी फणार्पितम, आपने ये जो आपके चरण कमलों को ते पदाम भुजम आपने अर्पण किया, किनको प्रदान किया, ये जो फणी है उनको अर्पण किया, कालिया को अर्पण किया। लेकिन अभी हमारे स्थान कितना दुर्भाग्य, हम कितना दुर्भाग्य है। तो ये दुर्भाग्यता को अनुभव करते हुए व्याकुलता में ये कभी कभी इन असुरों का स्तुति किया जाता है। तो नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में जिस प्रकार उस भक्ति का व्याख्या किया है कि क्या है व्याख्या, वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान में रखना चाहिए। जो नारद मुनि भक्ति का जिस प्रकार व्याख्या करते हैं वो क्या है कि तद विस्मरणेन परम व्याकुलेति, तद विस्मरणेन परम व्याकुलेति। नारद मुनि हाउएवर सेज भक्ति कंसिस्ट ऑफरिंग एवरी एक्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड, हर एक कार्य को भगवान को समर्पित करना और फीलिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, इस प्रकार का एक व्याकुलता को अनुभव करना जब उनका विस्मरण होता है, हर एक चीज को भगवान को अर्पण करना, जैसे गोपियों ने ही किया था कि पिछले भगवान कहते ना पा रहे हम मैं कैसे उनकी गोपियों की जो ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं त्याग किया, सब कुछ त्याग किया। ही दे गेव अप एवरीथिंग, वेद धर्म, जाति धर्म, अपना जो कुल धर्म है, सारे धर्मों को उन्होंने त्याग किया। त्याग करके वो मुझसे मेरे पास आए, दे हैव कम टू मी, कंप्लीटली सरेंडर टू मी, तो मैं कैसे उनको ये करूंगा। तो नारद मुनि सीधा व्रज गोपियों का ही स्तुति करते हैं और कहते हैं कि इनका ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो उस बात को, उसी सिद्धांत को इस श्लोक में, वही नारद मुनि भागवत में इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप में कहा जा रहा है। इवन गोपियों का जो भक्ति है वो भी आप दसवां स्कंध में पढ़ेंगे, उसमें भी सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करते हैं वो भी भले ही कुछ स्टोरी जैसा बता रहे, उसके अंदर बहुत रस भरा हुआ है। उसका जो अप्रत्यक्ष अर्थों को जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीकाओं से हम श्रवण करते हैं, तब मालूम पड़ता है श्लोक का जो अर्थ है, सीधा अर्थ है, तो उसमें वो इतना जो सूक्ष्म भाव प्रकट नहीं होता है। लेकिन जब आचार्य उसका सूक्ष्म, इसका भावार्थों को वर्णन करते हैं, तब मालूम पड़ता है अरे ये ऐसा है क्या, इज इट लाइक दिस। अगर किसी को अगर ये श्लोक दिया जाए, सीधा अनुवाद पढ़ते जाएंगे, तो वो बड़ा घातक हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा भक्तों को इस बात को कहता हूं, जब वो प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते हैं उस समय उनको श्लोकों को उच्चारण करना चाहिए और साथ साथ में हर एक शब्द का मीनिंग मालूम होना चाहिए, शब्दार्थ भी पढ़ना चाहिए और साथ साथ में अनुवाद पढ़ना चाहिए और बाद में उसका टीका भी पढ़ना चाहिए। टीका पढ़े बिना अगर कोई व्यक्ति श्लोकों का और अनुवाद पढ़ते जाता है वो उसका कोई लाभ नहीं होगा। वन शुड नेवर गो टू द नेक्स्ट वर्स। शुरुआत में ऐसा जो नए नए भक्त होते हैं वो तो ठीक है, अनुवाद क्या पढ़ना, व्याख्या क्या पढ़ना, इतना लंबा छोड़ा है, ठीक है जल्दी जल्दी खत्म करो, चलो जल्द गो ऑन विद द ट्रांसलेशंस। नो, वन शुड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रभुपाद। नहीं तो क्या क्या, अगर इसको अनुवाद पढ़ते जाएंगे तो ये श्लोक का जो गुह्य बात है वो कैसे मालूम पड़ता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता है कि नोबडी कैन नो दैट। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में नारद मुनि का जो अप्रत्यक्ष बात है, गोपियों का स्तुति, व्रज वधुओं का, व्रजवासियों की भक्ति का वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पांच प्रकार का रस है, खास करके वृंदावन में। वृंदावन में भी मधुरता होने पर भी उस मधुरता के अंदर भी पांच प्रकार रस रहता है। एक है माधुर्य रस, और माधुर्य मधुरता के अंतर्गत पांच है। जैसे वृंदावन का धूल है वो शांत शांत रस में है, लेकिन उनका शांत रस की भी मधुर है, इट इज ऑल्सो स्वीट। कैसे, जब वृंदावन का धूल, जब कृष्ण जंगल से गायों को चरते हुए वापस जब आते हैं वृंदावन की ओर, उस समय जब वृंदावन की जो शीतल हवा बहती है, मलय पर्वत से आता हुआ जो मलेशिया, कहां मलेशिया, उधर मलय में बहुत चंदन वृक्ष है, उधर के चंदन वृक्षों से जो शीतल हवाएं बहती आती है वो वृंदावन तक पहुंचती, वही जो सुंदर, जो चंदन से युक्त, चंदन सुगंध से युक्त जो शीतल हवाएं हैं, वृंदावन के धूल को उठाते हुए वो कृष्ण के शरीर में वो सुसज्जित कर देती है। ये सुंदर स्वरूप को देख के गोपियों के अंदर जो प्रेम है वो और बढ़ जाता है। तो भले ही ये धूल वृंदावन का शांत रस में, लेकिन उसके अंदर भी मधुरता है, देयर इज ऑल्सो स्वीटनेस इन दैट। और आगे शांत दास्य, इसमें भी मधुरता है, कृष्ण के जो दास रस में है। और खास करके इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमेशा गोपियां व्याकुल रहती थी जब कृष्ण गाय चरने के लिए जाते थे, उस समय गोपियां सोचती थी कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, कब उनसे मिलन करेंगे, कब उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार की जो व्याकुलता है भगवान की विरह में, ये व्याकुलता इस श्लोक में अप्रत्यक्ष में कहा गया है। वो व्याकुलता में कभी कभी वो भक्त अपने आप का निंदा भी करता है, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है उस बांसुरी का। तो गोपियां बांसुरियों का सौभाग्य वर्णन करती है कि कितना बड़ा सौभाग्य है, ये है बंबू, इसके अंदर कोई प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के होंठों को स्पर्श करती है। हमको वो मौका नहीं मिलता है, मिलता भी तो थोड़ा क्षणों के मिलता है, लेकिन ये तो हमेशा बैठी रहती है उधर, और भगवान की कर कमलों को एक शैया के रूप में बना के रखी है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी अपने आप को निंदा करते हैं और ये जो बांसुरी है उसका स्तुति करते हैं। ये जो अपनी निंदा और दूसरों की जो स्तुति है, ये एक प्रकार का राग है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, उधर वैसे थोड़ा सा पढ़ने के लिए प्रयास किया था, लेकिन तैयारी करने का टाइम नहीं था और मुझे स्पष्ट ज्ञान नहीं, जो स्पष्ट ज्ञान नहीं बोलना नहीं चाहिए, जो अनुराग है, पूर्वानुराग है, उन सब का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद भक्तिरसामृत सिंधु में। तो वो अलग अलग गोपियों की भावना को ये वर्णन किया जा रहा है कि ये इस बात को क्यों बोल रहे, क्योंकि इस प्रकार का भाव उसके अंदर है। तो अपना जो निंदा, दूसरों की जो स्तुति है, खास कभी कभी असुरों का भी हो, कभी कभी बंबू का हो, इतना हद तक गोपियां कहती है कि ये जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी के बंबू के जो वृक्ष है, वो क्यों खड़े हैं, क्योंकि धरती माँ वो जो है बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि ये जो बांसुरी है वो बंबू के जात वाला है ना, तो उनको इतना श्रेय मिला इसलिए वो बहुत खुश है। तो ऐसे ऐसे उनका जो चित्त है नाना प्रकार का विभ्रमित होता है व्याकुलता में, भगवान की व्याकुलता में, उस बात को इधर स्पष्ट करते हैं। क्योंकि उस समय वो भक्त क्या बोल रहा है उसको खुद को नहीं मालूम व्याकुलता में। तो जैसे भी अगर उसी बात को लिया जाए, नारद मुनि क्या कह रहे हैं उनको ही नहीं मालूम बोला जा सकता है कि शिशुपाल की भक्ति का गुणगान हो रहा है इधर शिशुपाल। तो नहीं हो ये व्याकुलता, ये नारद भक्ति सूत्र का जो ये शब्द है ये ध्यान में रखना चाहिए। विस्मरणेन परम व्याकुलतः। तो आगे यशोदा मई भी वो कृष्ण को भेजना ही नहीं चाहती है। शी डजंट वांट टू अलो कृष्ण टू गो टू द फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो उनको बहुत चिंता है अगर चले जाएंगे तो क्या होगा। जाने के बाद हमेशा चिंता रहती है, वो हमेशा खेलता होगा, हमेशा वो नाना प्रकार की लीलाओं में व्यक्त होते, वो कभी खाया होगा कि नहीं, बड़े बड़े असुर असुर आए थे, अभी असुरों से वो कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार कभी कभी ये जो व्याकुलता में उनको क्रोध भी आता है। ऐसे रतिरसामृत सिंधु के 7 गौण रसों में एक रस है एंगर। उस एंगर में कभी कभी ललिता कृष्ण को क्रोधित हो जाती है, क्रोधित होते राधा रानी को कहती है मैं कितनी बार कहा इस लंपट से तुम दूर रहना। लंपट जो शब्द है हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में गाली है। तो गाली किसको दिया जाता है? क्रोध में दिया जाता है। इतना हद तक कि चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी की भाव में वो भी क्या कहते हैं, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। तो ये भक्त भी देखिए रोज सुबह उठ के भगवान का स्तुति करते हैं, मंगला आरती करके बाद में एक गाली झुक दे के छोड़ देते नेल्स कोड ले लंपट। तो ये नहीं हो, ये सब बड़े ऊंचे स्तर की बातें हैं हमारे लेकिन फिर भी चर्चा करने से शुद्धिकरण होता है। ललिता कभी कभी इनको राधा रानी को भी डांटती है, बोलती है कि ये जो मैंने कहा है कृष्ण से हमेशा दूर रहो, ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो इस प्रकार अनेकों आचार्यों की टीकाओं में और अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन है। और दिस ऑल्स एंगर। और एक महत्वपूर्ण है, बहिरंगी के रूप में देखा जाए भीष्म पितामह वो क्या कर रहे थे, ये वैर के रूप में वो विरोधी पक्ष में एनिमी के रूप में वो बाण फेंक रहे थे कृष्ण के ऊपर। लेकिन जब कृष्ण के ऊपर भीष्म पितामह बाणों को फेंक रहे थे तो भीष्म पितामह का जो बाण है वो आके कृष्ण की छाती के ऊपर लग रहा था और कभी हाथ में कभी भुजाओं में उधर से खून निकल रहा था। तो उस समय कृष्ण को क्या महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाण जो है वो फूलों का हार के रूप में उनको लग रहा था। ये क्यों लग रहा था? क्योंकि भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में ये वीर रस है। तो एक्सटर्नली देखा जाए लोग सोचते हैं कि अरे भीष्म तो ऐसा कैसे मार रहा है कृष्ण को, तो इस प्रकार का भक्त रहना, नो ही इज ए प्योर डिवोटी। तो भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में रहने की ये कारण ये है कि कृष्ण उनके साथ जो वीर रस का आस्वादन करना चाहते, वॉन्ट एक्सपीरियंस द वीर रस। तो कभी भी अगर सिद्धांत को व्यक्ति नहीं जानता है, भीष्म पितामह और कृष्ण को दोनों के बीच में युद्ध को देख के अर्जुन और भीष्म देखिए ऐसा लगता है क्या ये कैसे कैसे भक्त है, उनका क्या विचार है, दे डोंट नो। तो भीष्म पितामह का गुणगान किया जाता है बिकॉज ही शॉर्ट एरोज एट कृष्ण, शॉर्ट एरोज एट कृष्ण। तो ये बहुत सारे बातें हैं लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात हमको इस श्लोक से उद्धृत होता है। एक है भक्त की नम्रता और दूसरी उनकी विरह की व्याकुलता से उत्पन्न होते हुए व्याकुलता की वजह से नारद मुनि ये बड़ा विचित्र श्लोक को उच्चारण करते हैं जिसके अंदर कहते हैं न भक्ति योगे न इति निश्चिता मतम ना तन्मयतया भक्ति योगे न। वो जो तन्मयता है भक्ति योग में, वो तन्मयतया भक्ति योग में नहीं है जितना वैरेण जितना वैरानुबंधे न जितना वैरानु बंदेना में जो तन्मयतया है, वो जो तन्मयतया भक्ति योग में नहीं है, ये बात को नारद मुनि नम्रता और दूसरी बात विस्मृति का व्याकुलता में वो उच्चारण किया जा रहा है, ये दो बात प्रस्तुत किए। हरे कृष्णा। कोई कमेंट्स है? नहीं, कमेंट्स है नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, वैज्ञानिकों का हमेशा ये स्थापना करना चाहते भगवान नहीं है करके। देखिए वैज्ञानिक लोग जो है वो अति स्थूल है, उन लोगों का विचार नहीं है। जैसे मैं वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, ये स्थापित करना भगवान नहीं करेंगे, उनका विचार नहीं है। उनका विचार यह है कि मैं लोगों को इंद्र तृप्ति कैसे प्रदान करूं। अगर मुझे इंद्र तृप्ति करना है और लोगों को इंद्र तृप्ति प्रदान करना है, अगर भगवान को लाया जाए तो यह संभव है। क्यों? भगवान परम भोक्ता है, इज ए सुप्रीम एंजॉयर। यू कैनॉट एंजॉय। अब मान लीजिए आपके सामने सुंदर सा प्लेट है जिसके अंदर रसगुल्ला सब पूरी वूरी सब रखा हुआ है, तब बैठे खाने के लिए, हा अगर वो गया बोले नहीं नहीं ये किसी और के लिए रखा था, तो आप खाएंगे उसको? नहीं। जब आपके अंदर ये विस्मृति है, ये प्लेट किसी का नहीं है मेरा है, तभी आप उस प्लेट को भोगोगे, है कि नहीं? तो जब तक ये हम एक वस्तु को तभी भोग सकते हैं जब हमारे अंदर ये भावना क्या है, मेरा है कि नहीं? तो इसलिए वो भगवान को पिक्चर में लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लोगों को भोग देना चाहते हैं। बट देयर आइडिया इज नॉट टू प्रूव दैट देयर इज नो गॉड, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन ये बौद्ध दार्शनिक है और अन्य पाश्चात्य देश के दार्शनिक है, वो ये काम करते हैं। उनका काम क्या है? भगवान नहीं है, अगर है तो वो मैं ही हूं। अगर वो है तो कोई और नहीं है, कुछ समय के बाद मैं भी बन जाऊंगा। अगर भगवान है, वो है नहीं, वो था मर गया, सब बना के हमारे लिए भोग के लिए बना के चला गया। तो ये अलग अलग प्रकार के भ्रांतिकर सिद्धांत है, दे आर फिलोसफीज। और ये जो सारे फिलोसफीज ये जो वैज्ञानिक लोग है उसको सपोर्ट करता है, दो है। एक है भोग की सामग्री प्रदान करना और दूसरा उसके लिए भगवान नहीं है करके बोलना। भगवान नहीं है करके बोलने वाले कौन है? दे आर मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स। द साइंटिस्ट डू द अदर पार्ट, वो एटम बम बनाएंगे, वो बम बनाएंगे, कार बनाएंगे, वो बनाएंगे, एयरप्लेन बनाएंगे, ताकि भोगो। एनीहाउ, ये बहुत सूक्ष्म विचार है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ यह वेरी इंपॉर्टेंट। इनका प्रश्न ये है, खास करके हम संस्था में इस प्रकार सेवा करते हैं, उस समय बहुत सारे रजोगुण की सेवा करना पड़ता है, जैसे मैनेजमेंट है, ये है, वो है। देखिए, इस प्रकार का जो समझ है, ये मैनेजमेंट रजोगुणी चीज है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रजोगुणी चीज है, और अन्य प्रकार का ये जो कार्य है वो ये है, ये विचार ही गलत है। ये संस्था में कोई भी हर प्रकार का सेवा जो है वो हर चीज शुद्ध भक्ति है, और शुद्ध भक्ति तीनों गुणों से परे है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैनेजमेंट करना रजोगुणी है, संस्था को मैनेज करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना ये रजोगुणी है, उसको सिद्धांत नहीं मालूम। He has not read Prabhupada books. I am very sorry to say that. हर एक कार्य नवदा भक्ति के अंतर्गत आता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, उसमें एक कार्य होता है अर्चनम, अर्चन, जैसे धन एकत्रित करके लाना। सर ये तो रजोगुणी है। ये रजोगुण इसलिए सोच रहा है क्योंकि प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ा। इसलिए जो प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ते और सिद्धांत नहीं मालूम, उनको डेटी किचन में बर्तन धोना चाहिए। क्यों? ये सिद्धांत के बिना अगर कोई व्यक्ति ये करने जाता है, खास करके निवासी भक्त, खास करके दीक्षित भक्त इस प्रकार करने जाते हैं, वो प्रचार नहीं बल्कि उत्पात करेगा। ठीक है, कोई और अन्य जो इस लाइन में, उनको एंगेज किया जा सकता है, लेकिन जो निवासी भक्त है और अन्य दीक्षित भक्त है, तो उनको ये चेतना बना के रखना चाहिए कि मैं जब धन मंदिर में लेके आता हूँ, दान लेके आता हूँ या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, पहला धन लेने की बात करते हैं, लाइफ मेंबर बनाना, इसको अर्चना के अंतर्गत पांच अंग है, पंचांग सेवा। अर्चना में सबसे पहला है अभिगमना। कैसे हम उठेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, सजाएंगे और भगवान के पास जाएंगे इनकी सेवा करने के लिए। दूसरा है उपादाना, यानी भगवान की सेवा के लिए सामग्रियों को इकट्ठा करना। लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट में जो है वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए धन को संग्रह कर रहे हैं, उसको उपादान कहा जाता है। ये बात नहीं मालूम है, अगर वो जाता है वो उपादान नहीं बल्कि कुछ और उत्पाद करके आता है। दैट इज द प्रॉब्लम। इफ यू नो द फिलॉसफी देन यू विल बी मेंटेनिंग प्योरिटी। प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे, सिद्धांत को चर्चा करेंगे, भागवतम क्लास में श्रद्धा से बैठेंगे, तब हमारी कार्यों में शुद्धता रहती है। भगवान जो है वो शुद्ध चीजों को स्वीकार करते हैं। जो चीजें लेके गए वो शुद्ध है तो भगवान स्वीकार करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक जगत के साथ ज्यादा संपर्क होने की वजह से उसके अंदर कभी कभी अशुद्धता आती है, तुरंत वो अशुद्धता को साफ करने के लिए भूत शुद्धि कहा गया है। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ डेटी वर्शिप इज भूत शुद्धि। और भूत शुद्धि में ना हम विप्रो नचनपति ना वैश्य न शुद्र, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं लाइफ में डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, रोज मनन करना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं दासों का दासों का दासों का दास हूं। यू शुड प्रैक्टिस दिस थिंग्स। और ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो कर्मियों में हमारे अंतर क्या है? नॉट मच डिफरेंस। सो द वेरी फैक्ट इज दिस, दैट दिस थिंकिंग that it is passionate activity, ये रजोगुणी सेवा मैं नहीं करेगा, ये तमोगुणी सेवा मैं नहीं करेगा, तो करेगा क्या? क्योंकि इस भौतिक जगत में सत्व रजस तम ही है, ये तीनों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम इन तीनों गुणों से परे तभी होंगे जब हम जो भी मौका आता है, कुछ भी मौका आता है सेवा का, तुरंत करेंगे। गोपियों ने नहीं सोचा था कि हम भगवान को केवल दर्शन ही करते रहेंगे। यशोदा मैंने ये नहीं सोचा था कि भगवान को मैं काले अपने स्तनों से दूध पिलाती रहूंगी, स्वयं अपने मंत्र, ये रजोगुणी सेवा है, हाथ पैर हिल रहे तो इसलिए रजस है। नो एक्शन एवरीवेयर, वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। वी शुड अंडरस्टैंड द फिलॉसफी। एवरी एक्टिविटी डिजाइन बाय प्रभुपाद इन अवर मूवमेंट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। चाहे वो लाइफ मेंबरशिप हो ना, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? मेरे प्रिय भगवान का गुणों को मैं 10 लोगों को बताऊंगा। दैट इज व्हाट इट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन मींस। तो द कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा चेतना, चेतना मंत्र होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं प्रसाद वितरण कर रहा हूं, देन इट विल बी प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान का प्रसाद। नहीं, इतने लोगों को हमने खिलाया। एक बार बहुत पहले 10 साल में जब ज्वाइन किया था, थोड़ा हमारे कांग्रीगेशन लोगों ने एक बार ऐसे ब्रह्मास्त्र के बाद यही बात, हमने इतने सारे लोगों को खिलाया, मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने डांटा लोगों को. शुड नॉट बी एटीट्यूड. इतने लोगों के लाए क्या, व्हाट हु आर यू टू फीड. कृष्णा फीड्स एवरीबॉडी. वी शुड थिंक दिस इज कृष्ण प्रसाद आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल. प्रभुपाद इट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन नॉट बुक सेलिंग. कितना बेचने जा रहा है, कितना बिका, तो ये चेतना नहीं है. बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन. सो कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देर इज नो सत्व, देर इज नो रजस, एवरीथिंग इज दिव्य. वेदर क्लीनिंग द टॉयलेट और मैनेजिंग, मेकिंग लाइफ एम्बर और गिविंग भागवतम क्लास, कुछ भी हो, ड्रेसिंग द डेटी, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल टू थ्री मोड्स मटेरियल नेचर. जरा सा भी उसके अंदर सत्व रजस तमा का जरा सा भी उसके अंदर कोई ये नहीं है. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की. श्रील प्रभुपाद की जय.